Manthan. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए आदि कर्मयोगी अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडे और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
दुनिया में भारत वो देश है जहां कुल आबादी का जनजातीय वर्ग की आबादी लगभग 8.5 से 9% है, और भारत वो देश है जहां जनजातीय वर्ग की विविधता इस तरह से है कि 700 से ज्यादा ट्राइब्स भारत में बसते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस विविध जनजातीय वर्ग पर गर्व करें, लेकिन ये भी आवश्यक है कि इस विविध जनजातीय वर्ग तक वो सभी सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं और वो सभी योजनाएं पहुंचें जिस वजह से वे मुख्य धारा में आ सकें। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए संचालित की जाती हैं, लेकिन जरूरत थी कि इन सभी योजनाओं को जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाए, कैसे गांव-गांव तक और हाशिए पर जनजातीय वर्ग तक ये सभी योजनाएं पहुंचे, और इसीलिए सरकार ने एक खास अभियान की शुरुआत की, आदि कर्मयोगी अभियान। इस अभियान में एक विशेष चेन लीडर तैयार की जा रही है, एक नेतृत्व तैयार किया जा रहा है, एक ऐसा काडर जो गांव-गांव तक और हाशिए पर जनजातीय वर्ग तक इन सभी सामाजिक आर्थिक सुविधाओं और सरकार की योजनाओं को पहुंचाएगा। तो आज हम इसी अभियान पर खास बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडे। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
धन्यवाद अमल जी।
सबसे पहले हम आदि कर्मयोगी अभियान के इस शब्द से ही कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे कि ये क्या अभियान है और इस अभियान की परिकल्पना कैसे की गई है।
आदि कर्मयोगी अभियान एक बहुत बड़ा आंदोलन है, ये केवल एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के तौर पे नहीं है। जो मुख्य इसकी परिकल्पना की गई है कि अलग अलग राज्य सरकार, भारत सरकार विगत कई वर्षों से, लगभग 80 वर्ष से इंडिपेंडेंस के बाद से जनजातीय लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम चलाते हैं। भारत सरकार ने पिछले 10 सालों में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम चलाए हैं जिससे इस तरह की स्कीम्स पहुंच पा रही है। तो बजट भी लगभग 3 गुना हो चुका है, परंतु फिर भी ये देखा जा रहा था कि स्कीम की जो डिलीवरी है उसको कैसे और इम्प्रूव किया जा सके। ट्राइबल सबसे रिमोट एरिया में रहता है और इस ट्राइबल पॉपुलेशन को पहुंचने के लिए सर्विस डिलीवरी हमारे जो ग्रास रूट पे एम्प्लॉयज हैं, जो ट्राइबल डिपार्टमेंट के हैं, अन्य विभागों के हैं, उन्हीं के थ्रू होती है। तो इस डिलीवरी को कैसे इम्प्रूव किया जा सके कि हमारे पास फंड तो है लेकिन सर्विस डिलीवरी कैसे इम्प्रूव हो, तो हम कैसे अपने जो एकदम अग्रिम पंक्ति के जो कर्मचारी हैं उनको कैसे सशक्तिकरण किया जाए। तो एक बहुत बड़ा इसका उद्देश्य है कि उनके अंदर ट्राइबल पॉपुलेशन के प्रति कैसे सेंसिटिविटी लाई जा सके, कैसे उनके उस कार्यक्रम को, जो कार्यक्रम तमाम अलग अलग मंत्रालय चला रहे हैं, लगभग 25 मंत्रालय ऐसे हैं जो अलग अलग विकास के, सोशल डेवलपमेंट के सेक्टर हैं, चाहे वो बिजली है, पानी है, सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इस तरह के ये जो विभाग हैं जो बुनियादी सुविधाएं पहुंचाते हैं उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके, इन्हीं जो हमारे सेट ऑफ एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे जो कर्मचारी हैं फ्रंटलाइन में, उनको कैसे सेंसिटिव बनाया जा सके, कैसे उनके अंदर एक मोटिवेशन लाया जा सके ताकि ये सर्विस डिलीवरी इम्प्रूव हो सके। इस पूरी परिकल्पना के तहत ये जो आदि कर्मयोगी अभियान को संरक्षित किया गया है और इसमें अलग अलग टीयर बनाए गए हैं ताकि न केवल ग्रास रूट लेवल लेकिन जो हमारे राज्य स्तर पे हैं उनके लिए भी स्पेशल ये कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाया गया है। उसके बाद स्टेट लेवल से फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी हैं, चिन्हित अधिकारी, और जैसा मैंने बताया कि चूंकि अलग अलग सोशल सेक्टर के डिपार्टमेंट्स इसमें भाग लेते हैं जो ये सर्विस डिलीवरी देते हैं, तो इस पूरे प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने 7 विभाग चिन्हित किए हैं जिनके अधिकारी कर्मचारियों को सेलेक्ट करके उनको स्टेट लेवल पे ट्रेनिंग दी गई है, फिर उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेनिंग दी जा रही है, फिर ब्लॉक लेवल पे मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जा रहे हैं
जी।
तो ये पूरा 3 टीयर जो ट्रेनिंग है जिसके तहत लोगों के, जो हमारे अधिकारी हैं, उनके अंदर सबसे पहले उनके अंदर सेंसिटिविटी और मोटिवेशन और इंस्पिरेशन लाया जा रहा है कि वो अपने कार्यक्रम को सेंसिटिविटी के साथ कर सके और अच्छी तरह डिलीवरी पहुंच सके।
तो जैसा कि आपने बताया इसमें अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे, तो एक आंकड़ा में दिख रहा था कि 20 लाख से ज्यादा लोगों का एक काडर तैयार किया जाएगा, तो क्या इस काडर में जो आदि कर्मयोगी अभियान में शामिल होंगे क्या यही अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे और स्टेक होल्डर्स भी शामिल होने जा रहे हैं, किस तरह का पूरा ये एक मॉडल होगा जिसमें कि ये काडर बनेगा जो गांव-गांव तक जाकर लोगों तक इन सर्विसेज को या योजनाओं को पहुंचाएगा।
तो जैसा मैंने बताया कि इसमें एक जो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है वो तो हमारे अलग अलग विभाग हैं।
जी जी
तो सरकारी विभाग हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड बनाने वाले, इस तरह के तमाम विभाग हैं, तो उनसे हमने 7 विभागों को जो मूलतः इस तरह की बुनियादी सुविधाएं पहुंचाते हैं उनको चुना है, उनके अधिकारी कर्मचारी को चुना है। तो वो लगभग हम लोगों ने पूरा कैलकुलेशन किया है कि अगर हम जैसे ये 1,00,000 गांव के लोग चिन्हित होंगे और लगभग 3,000 ब्लॉक इसमें कवर हो रहे हैं और 550 डिस्ट्रिक्ट के तहत ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, तो इसकी कैलकुलेशन अगर हम लोग करते हैं तो ये लगभग 1,00,000 जो है इस तरह के इम्प्लॉयज़ का कैडर तैयार होगा। परंतु जो बाकी 1,00,000 जो बताया गया है उसमें हमारे जो ग्राम स्तर पर आप देखोगे कि गांव में जरूर ऐसे लोग होते हैं जो एक लीडरशिप रोल में रहते हैं और वो एक रिसोर्स पर्सन के तौर पे काम करते हैं कि प्रेरणा दें कैसे कि अच्छे से काम हो सके, उसको मॉनिटर भी करते हैं, सोशल ऑडिट भी करते हैं और सहयोग भी करते हैं कि कैसे ग्राम स्तर पर लोगों को जोड़ा जा सके, लोगों की डिमांड को रेज किया जा सके, लोगों की बातों को ऊपर पहुँचाया जा सके। तो इस तरह के जो आदि सहयोगी और आदि साथी ये दो और उसमें सम्मिलित हैं, दोनों को मिला के जैसे टीचर्स हैं, वॉलेंटियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, यूथ लीडर्स हैं, इस तरह के तमाम जो ग्राम स्तर के लोग हैं उनको भी जोड़ने का एक पहल है इसमें। और इस तरह दोनों को मिला के सरकारी अधिकारी और जो गैर सरकारी हमारे जो और साथी सहयोगी हैं उनको मिला के ये लगभग 2,00,000 आदि कर्मयोगी का कैडर तैयार करने की योजना है।
और इसमें जैसे बहुत सारे युवा स्वयं सहायता समूह इनको भी जोड़ने का एक प्रावधान है, तो आपने बताया कि लोकल स्तर पर जो लोग हैं वो भी इसमें जुड़ेंगे, तो कैसे युवा स्वयं सहायता समूह या ऐसे इन्फ्लुएंसर्स इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे?
जैसे मैंने बताया कि ये जो पूरी योजना है, अभियान है, ये 3 चरणों में है। पहला चरण जो है रीजनल प्रोसेस लैब जिसको हम बोलते हैं
जी,
रीजनल प्रोसेस लैब में हम लोगों ने स्टेट लेवल के मास्टर ट्रेनर्स को सेलेक्ट किया था अलग अलग राज्यों से और उस पूरे राज्य से 7 विभागों से लिया और इस तरह के 3-3, 4-4 राज्य के क्लस्टर बना के रीजनल लेवल पे इसका एक 7 दिन का प्रोसेस लैब किया था। उसके बाद ये स्टेट लेवल पे होता है स्टेट प्रोसेस लैब, जिसमें स्टेट लेवल के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग चिन्हित होकर आते हैं उनको जो स्टेट मास्टर ट्रेनर्स हैं वो उनको ट्रेन करते हैं और इसी तरह फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ब्लॉक के चुने हुए लोग आते हैं और उनको डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर्स तैयार करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन जब ये ब्लॉक लेवल पे जाता है, ब्लॉक लेवल में इसमें चूंकि हम सब जानते हैं कि ब्लॉक के दफ्तरों की पहुंच सबसे ज्यादा होती है किसी भी गांव के लिए, किसी भी ट्राइबल के लिए, क्योंकि वो सबसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। तो उस लेवल पे आने के बाद उसमें विलेज जो वर्कर्स हैं, जो यूथ लीडर्स जैसे आपने बताया कि उनको भी सम्मिलित करने की योजना है, जैसे कार्यशाला की जाएगी, उनसे सुझाव मांगे जाएंगे। तो एक ब्लॉक लेवल पे जो 2 दिन की ओरिएंटेशन और वर्कशॉप है उस दौरान हम लोग इस तरह के लोगों को जोड़ने की पूरी सोच है। और उसके बाद जब ग्राम स्तर पे जाते हैं, जो आखिरी चरण हमारा ग्राम स्तर, वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों वो महत्वपूर्ण है? क्योंकि उसी स्तर पर असली कार्य जो है डिलीवर होगा, जो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे जो भी योजनाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, तरह तरह की योजनाएं, ये सारी डिलीवरी जो है ग्राम स्तर पर होनी है। तो ग्राम स्तर पर जो हमारे वर्कशॉप है और जो पूरी ये ट्रेनिंग कम वर्कशॉप की कार्यशाला जो होगी, उसमें गांव के जो अच्छे मौजूद लोग होते हैं, यूथ लीडर्स हैं, उन वॉलेंटियर्स हैं जिनको आप बता रहे हैं, उनको भी शामिल करने की योजना है। और उस दौरान कई तरह की जो है कार्य योजना बनाने की भी बात है
जी। इसमें एक विलेज विजन तैयार करने की भी योजना है, ये विलेज विजन क्या है, किस तरह से ये गांव के लिए एक योजना का एक खाका तैयार करने में मददगार होगा?
जी वही मैं बता रहा हूँ कि जो लास्ट चरण है विलेज लेवल, वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि गांव का अगर कोई निवासी है तो उसके लिए सरकार क्या होती है? उसके लिए सरकार का मतलब है जो बिजली पहुंचाए, उसके लिए सरकार का मतलब है जो सड़क पहुंचा दे, जो उसको किसी प्रकार की जॉब दे दे। तो सरकार के लिए अलग अलग विभाग तो हमने बनाए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग के लिए, तो गांव वाले के लिए तो हर डिपार्टमेंट एक सरकार। तो गांव के लोगों को लेकिन शामिल कैसे किया जाए, क्योंकि उनकी ज़रूरतें अलग है और तमाम बार हम लोग जो है योजनाएं बनाते हैं वो ऊपर टॉप डाउन हो जाती है। तो ये पूरा प्रयास ये है कि बॉटम्स अप, मतलब नीचे के सुझाव, जो असली उसके उपभोक्ता हैं, जो असली उसके उपयोग करने वाले लोग हैं, गांव के लोग, उनको कैसे उस पूरी योजना बनाने में शामिल किया जा सके, इस पूरी परिकल्पना को करते हुए जो विलेज विजन प्लान बनाने की बात हुई है कि गांव वाला अपने गांव को कैसे देखता है, आज से 10 साल बाद कैसा नजर आएगा, क्या क्या सुविधाएं उसके गांव में होनी चाहिए, किस तरह के गांव को वो परिकल्पित कर रहा है 10 साल, आने वाले 10 साल, 5 साल में। ये एक उसी पूरी परिकल्पना को एक पुस्तक के रूप में जो है परिभाषित किया जाएगा, जिसको हम लोग विलेज वर्क बुक बोलेंगे, विलेज वर्क एक्शन प्लान, जो विलेज विजन बिल्डिंग एक्शन प्लान है वो उसको पूरी उस बुक में लिखा जाएगा, जो कि एक रिकॉर्ड रहेगा। वो रिकॉर्ड इस तरह से रहेगा कि उसमें गांव वाला क्या चाहता है, उसको सड़क चाहिए, उसको सड़क कितनी चौड़ी चाहिए, क्योंकि सड़कों के अपने मापदंड हैं। अगर ग्रामीण सड़क योजना तो उसकी मापदंड है कि इतने किलोमीटर तक बंद हो जाती है, लेकिन हो सकता है गांव वालों की जरूरतें ज्यादा आगे तक के लिए हों।
जी जी,
इसी तरह की अलग अलग योजनाओं की जो जरूरतें हैं वो गांव वाला अपनी भाषा में वहां उस विलेज वर्कबुक प्लान, विलेज विजन डॉक्यूमेंट जो बना रहे हैं उसमें डालेगा, और वो फिर विलेज डॉक्यूमेंट ब्लॉक लेवल से होते हुए, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से होते हुए स्टेट लेवल पे जाएगा। और पूरा प्लान ये है कि हम लोग 1,00,000 गांव के विलेज विजन डॉक्यूमेंट बनेगा, 2 अक्टूबर को सभी ग्राम सभाएं इसको अप्रूव कर सकें, ये हम लोग प्रयास में हैं। सारे राज्य सरकारें बहुत समर्थन दे रही हैं इसमें, तो पूरी उम्मीद है कि ये जो 1,00,000 विलेज विजन डॉक्यूमेंट जो अगर अप्रूव हो गया 2 अक्टूबर को, तो उससे न केवल नीचे के लोगों को अपनी बात कहने की मतलब एक अवसर प्रदान होगा, बल्कि इसके अलावा जो हम लोग एट द नेशनल लेवल हैं या अगर स्टेट लेवल पे हैं जो पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी बनाते वक्त भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि गांव वालों की क्या जरूरत है।
जैसे इसमें आदि सेवा केंद्रों का एक कॉन्सेप्ट है, इस बारे में भी विस्तार से बताएं कि किस तरह से ये काम करेगा, क्योंकि इस योजना के तहत इसे एक सेवाओं का वन स्टॉप सेंटर बनाने की योजना है।
इस पूरे अभियान की अगर 3 मुख्य आउटकम देखें तो पहला है विलेज विजन प्लान डॉक्यूमेंट, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने बताया कि इसमें आने वाले आपके पूरे 5-10 साल के लिए कैसा गांव चाहते हो, क्या क्या योजनाएं चाहते हैं, वो रहेगी। दूसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है वो है सेवा केंद्र। आदि सेवा केंद्र से हमारा जो अभिप्राय है वो ये है कि किसी एक ऐसे फिजिकल लोकेशन पे वो रहेगा जिसमें आप कौन सी योजना चाहते हो जो नहीं चल पा रही है, कोई आपकी शिकायत है, कोई बहुत बार ये देखा गया है कि तमाम गवर्नमेंट्स इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं चला रही हैं लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन नीचे तक नहीं पहुंच पाती है। तो आदि सेवा केंद्र एक तो होगा कि उसका रोल कि अगर आपको कोई ग्रीवेंसेज है, आपको कोई चीज नहीं मिल पा रही है, आप जानते हो उस योजना के बारे में नहीं मिल पा रही है, तो आप उसमें दर्ज कर सकते हो, उसके रजिस्टर्स बनेंगे उसमें दर्ज कर सकते हो, और हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं कि एक पोर्टल के थ्रू उसको कैप्चर भी किया जा सके ताकि वो हर लेवल पर मॉनिटर हो सके, डिस्ट्रिक्ट पे, ब्लॉक पे, स्टेट पे और अपने नेशनल लेवल पे भी। तो एक तो ये ग्रीवेंसेस मतलब अपनी कोई परेशानी है वो एक कैप्चर करने के लिए हो जाएगा। दूसरा इसमें यह है कि इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया कि बहुत बार बहुत सारी योजनाओं की इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है लोगों तक, तो उनको पता ही नहीं है कि ऐसी कोई हॉर्टिकल्चर की योजना चल रही है जिसमें इस तरह की सब्सिडी है, या कोई स्किल डेवलपमेंट की योजना चल रही है जिसके तहत फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जो एक वहां पे एक इन्फॉर्मेशन सेंटर का भी काम करेगी। प्लस इसमें अगर सारे लोग एक साथ बैठेंगे, उसमें जो आदि सेवा केंद्र का जो एक और परिकल्पना है कि उसमें एक दिन एक बारी बारी से अलग अलग विभाग के जो हमारे कर्मयोगी बने हैं आदि कर्मयोगी वो आएंगे, उसमें ब्लॉक लेवल के आदि कर्मयोगी बैठक करेंगे और गांव वालों के साथ डिस्कस भी करेंगे कि क्या समस्याएं हैं, कैसे दूर की जा सकती हैं, तो आपस में मिल बैठ के भी वो समाधान निकालेंगे। मैंने 3 बिंदु बताए थे। तीसरा जो एक महत्वपूर्ण आइटम उसमें है जो हमारा आउटकम है वो है सैचुरेशन
जी,
कि हम लोग तमाम स्कीम चला रहे हैं, भारत सरकार बहुत सारी स्कीम चलाती है और हमारा जो विभाग है जनजाति कार्य मंत्रालय, ये पीएम जनमन एक प्रधानमंत्री जनमन योजना है और एक धरती आबा जनजाति उत्कर्ष योजना है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट की अपनी स्कीम नहीं है, ये बेसिकली एक कन्वर्जेंस स्कीम है। तो कन्वर्जेंस स्कीम का मतलब ये होता है कि इसके अंदर अलग अलग विभागों की स्कीम को कैसे ट्राइबल तक पहुंचाया जा सके, जैसे एग्रीकल्चर की स्कीम है प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, एनिमल हस्बेंड्री की अगर स्कीम है कि गोटरी या फिशरी या पिगरी पे कोई सब्सिडी मिलती है उसको कैसे वहां तक पहुंचाएं, तो ये दोनों जो योजनाएं हैं पीएम जनमन और धरती आवा, ये दोनों हमारी कन्वर्जेंस योजनाएं हैं। अब इनका सैचुरेशन कैसे हो, सैचुरेशन का मतलब है कि पूरे गांव के सभी लोगों का आधार कार्ड बन जाए
जी, जी।
पूरे गांव में जितने ट्राइबल हैं उनको अगर FRA पट्टा मिला है, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत पट्टा मिलता है, उस फॉरेस्ट राइट्स पट्टा के तहत उनको बहुत सारे और बेनिफिट्स भी मिलने चाहिए, तो वो मिल जाएं। तो इस तरह की जो सैचुरेशन का एक प्रयास है कि जितनी योजनाएं भारत सरकार चला रही है उन सबको एक सैचुरेशन मोड पर वहां तक पहुंचा सके ताकि ट्राइबल को सारी बेनिफिट्स मिल सके।
निश्चित तौर पर और आगे आने वाले समय में जो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से जनजातीय वर्ग को मुख्य धारा में लाने का प्रयास है और शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत जरूरतों से जनजातीय वर्ग को जोड़ने की जो कोशिश है वो आदि कर्मयोगी अभियान के जरिए उम्मीद करते हैं कि सफल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में जुड़े और इस विषय पर आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे आदि कर्मयोगी अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडे और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। मंथन।